नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने ईरान में तेजी से बदलती परिस्थितियों के बीच सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सुरक्षित स्थान पर रहें और किसी भी आवाजाही से बचें। मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि ईरान के भीतर और सीमा चौकियों तक किसी भी प्रकार की आवाजाही तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के साथ समन्वय और निर्देश के बाद ही की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सभी बिजली संयंत्रों, सैन्य प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला इमारतों से दूर रहें, घर के अंदर रहें। दूतावास द्वारा किराए पर लिए गए होटलों में ठहरे हुए लोगों को भी यह परामर्श दिया गया है। दूतावास से मोबाइल नंबर 9891081 9891 01 0 9 1 2 8 9 8 9 1 2 8 1 0 9 1 0 2 और 9 8 9 9 3 2 1 7 9 3 5 9 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। दूतावास का ईमेल पता cons.tehran@mea.gov.in है।
पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। इसराइल की सेना ने कहा है कि उन्होंने ईरान शासन के कई ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इसराइल के अधिकारियों ने कहा कि इसराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ने के कारण इन हमलों का उद्देश्य सैन्य, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे को बाधित करना था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जलडमरो मध्य को दोबारा खोला नहीं गया तो ईरान पर विनाशकारी हमले किए जाएंगे। इस बीच रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होर्मुज जलडमरो मध्य को फिर से खोलने के लिए लाए गए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वीटो कर दिया है। 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहरीन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर मतदान किया। परिषद के 11 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि रूस और चीन ने इसके विरोध में अपना वीटो अधिकार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और कोलंबिया इस मतदान से दूर रहे। वीटो शक्ति रखने वाले स्थायी सदस्य रूस और चीन द्वारा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति सामान्य है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी में कोई सूचना नहीं है।
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है।
वहीं पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए व्यावसायिक एलपीजी की उपलब्धता बढ़ा दी है। सरकार ने इनके लिए प्रतिदिन 19 किलोग्राम के बराबर क्षमता वाले 180 सिलेंडरों के बजाय 360 सिलेंडर आवंटित किए हैं। दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि स्वास्थ्य और सरकारी संस्थानों, होटलों, रेस्तरां, ढाबों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में 19 किलोग्राम के बराबर क्षमता वाले 6000 से अधिक सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता है। इसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राथमिकता दी जा रही है। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल समाप्त हो गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास किया। असम की 126, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए गुरुवार को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में पहाड़ी इलाकों के संदिग्ध उग्रवादियों के एक घर पर किए गए बम हमले में 2 बच्चों की मौत के बाद घाटी के 5 जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राज्य गृह विभाग ने इन जिलों में इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से 3 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद ने हमले की कड़ी निंदा की। आईपीएल क्रिकेट में गुवाहाटी के बरसा पारल क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स द्वारा दिए गए 151 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 9 विकेट खोकर केवल 123 रन ही बना सकी। राजस्थान रॉयल्स ने 11 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।